जन्नत बाजार से लौटने के बाद रॉन और निक के चेहरे चिंता से लदे हुए थे। एमा, ज़ेन और आलिया भी जन्नत के हमशक्ल होने की बात सुनकर हैरान थे। निक, वो लड़की प्रियल नहीं, बिल्कुल उसके जैसी दिखने वाली कोई और होगी, आलिया ने उसे समझाते हुए कहा। ओ रियली आलिया, प्रियल जैसी दिखने वाली कोई और लड़की? हम सब तो यहाँ इंडियन डेली शॉप देखने बैठे जहाँ अचानक से एक हमशक्ल पैदा हो गया, निक ने इरिटेट होकर कहा। आलिया ने उसे शांत करते हुए कहा, आप लोग रिलैक्स हो जाइए, याद है मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा था? जन्नत बाजार में उनके कुछ लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है कि प्रियल भी इस फील्ड में काम कर रही हो। मत भूलिए भाई की उसने भी इंस्टीट्यूट में सेम ट्रेनिंग ली थी, आई थिंक प्रियल भी वहाँ हमारी तरह मिशन के तहत ही गई होगी। होप सो ऐसा ही हो, जिनी इस बारे में सुनेगी तो बहुत खुश हो जाएगी, एमा ने कहा। तुम जिनी को इस बारे में कुछ नहीं बताओगी, रॉन ने उसे डांटते हुए कहा। लेकिन प्रियल ठीक तो है ना, ज़ेन ने पूछा। निक ने गुस्से में जवाब देते हुए कहा, उस घिनौनी जगह पर कोई भी लड़की ठीक कैसे हो सकती है? जन्नत बाजार में जिस जन्नत के डांस के चर्चे होते हैं वो कोई और नहीं प्रियल है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो यहाँ तक पहुँची कैसे। ये तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि प्रियल यहाँ उस हालात में क्या कर रही है, अगर तू उसे घर से नहीं निकालता तो वो आज एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रही होती, एमा ने निक की तरफ देखकर तंज कसा। उसकी बात सुनकर निक ने उसकी तरफ गुस्से से देखा, वो कुछ रिएक्ट करता कि तभी उसके फ़ोन पर मिस्टर मुखर्जी का कॉल आया। बस इन्हीं की कमी थी, निक ने बड़बड़ाते हुए कहा और फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। हेलो कैप्टन निक, थोड़ी देर में एक छोटी सी टी पार्टी है उसी जगह पर, आप लोग पहुंच जाइएगा। बिना उसके जवाब का इंतज़ार किए मिस्टर मुखर्जी ने फ़ोन काट दिया। अब तक तो उन्हें इस बारे में सब कुछ पता चल गया होगा, जाकर उन्हें भी संभालना होगा, आलिया ने सांस छोड़ते हुए कहा। मिस्टर मुखर्जी की छोटी सी टी पार्टी का मतलब वहाँ होने वाली मीटिंग से था। वे लोग अपनी बहस बीच में भूलकर मिस्टर मुखर्जी के बताए हुए जगह पर उसी गोदाम में पहुंचे। कुछ देर बाद वे मिस्टर मुखर्जी की बताई हुई जगह पर पहुंच चुके थे। रात के 3 बज रहे थे, वहां उनके अलावा एक और आदमी मौजूद था। मिस्टर मुखर्जी ने उन लोगों के आते ही कहा, सॉरी कैप्टन निक, लेकिन आज आपका बिहेवियर बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं था। आई एम सॉरी फॉर दैट, निक ने धीमी आवाज में कहा। अभी तो बात को संभाल लिया गया है, लेकिन आगे से इस तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी, मिस्टर मुखर्जी ने कहा। उनकी बात सुनकर ज़ेन ने हैरानी से पूछा, आपको इस बारे में कैसे पता चला? मिस्टर मुखर्जी ने जवाब देते हुए कहा, एक्चुअली इस मिशन में एक दो लड़कियां भी इन्वॉल्व हैं जो जन्नत बाजार से हमसे जुड़ी हुई हैं, उन्होंने ही बताया था सब, वो दोनों अभी आती ही होंगी, मैं अभी उन दोनों को यहाँ नीचे लेकर आता हूँ, किसी को शक ना हो। उन लोगों को पूरी स्थिति समझाकर मिस्टर मुखर्जी उन दो लड़कियों को लाने के लिए चले गए। उनके जाते ही आलिया ने कहा, देखा भाई, मैंने कहा था ना कि प्रियल भी इस मिशन में इन्वॉल्व है, देखना वही जासूस होगी, अभी आ ही रही होगी यहाँ पर। अगर ऐसा हुआ तो आते ही मैं सबसे पहले प्रियल से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगूंगा। हम लोग मिलकर काम करेंगे तो जल्द ही वहाँ से सभी लड़कियों को बाहर निकाल लेंगे। निक की आंखों में प्रियल से मिलने की उम्मीद उसकी आवाज़ में साफ झलक रही थी। वे लोग मिस्टर मुखर्जी का इंतजार करते हुए हल्की फुल्की बात कर रहे थे कि तभी वहाँ सीढ़ियों से किसी की आहट हुई। वहाँ किसी की आहट सुनकर निक के साथ भी सभी सीढ़ियों की तरफ बढ़े। उन्होंने देखा कि मिस्टर मुखर्जी के साथ दो लड़कियाँ थीं। मिस्टर मुखर्जी ने उनका परिचय देते हुए कहा, सर इनसे मिलिए, ये है हमारी ऑफिसर निधि जिसने सबसे पहले इस मिशन को वहाँ जाकर ज्वाइन किया, और ये चांदनी जो सुनहरी ताई के यहाँ लगभग 2 सालों से काम कर रही है। तो आप हैं वो जिसके जन्नत बाजार में चर्चे हो रहे हैं, लेकिन आप भी सबकी तरह जन्नत को देखकर फिसल ही गईं, उस लड़की चांदनी ने निक की तरफ देखकर कहा। निक के साथ भी सभी उन दोनों लड़कियों को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि मिशन से जुड़ी हुई ऑफिसर्स में प्रियल भी एक होगी। प्रियल को वहां ना पाकर उन सबके चेहरे पर निराशा के भाव थे। ओ, तो तुम हो वो ऑफिसर जिन्होंने जन्नत बाजार के मिशन को ज्वाइन किया है, एमा ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा। मैंने अभी वहां पर ज्वाइन किया है, चांदनी ही मुझे वहां पर लेकर गई थी। मैं चांदनी से पहली बार मार्केट में मिली थी जब उसके कमाए पैसे उसके चाचा ने उससे छीन लिए थे, निधि ने चांदनी और अपना परिचय देते हुए कहा। चांदनी ने मायूस होकर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, मेरे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे साहब, उनके जाने के बाद मेरी सारी जिम्मेदारी मेरे चाचा पर थी, लेकिन उन्होंने पैसों के लालच में मुझे सुनहरी ताई के यहाँ बेच दिया था। जब मैं पहली बार वहाँ गई तो 15 साल की थी। वहाँ किसी को भी रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जन्नत बाजार में जाने के रास्ते तो हैं, पर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जन्नत बाजार के सारे रास्ते बंद कमरों में ही बंद हो जाते हैं, हमें बाहर निकलने की कोई आज़ादी नहीं है। कभी कभार कोई कस्टमर होटल में ले जाता है तो कभी खरीदारी के लिए ताई बाहर भेज देती है। चांदनी की आपबीती सुनकर उन सबकी आंखें नम हो गई। निक का ध्यान अभी भी जन्नत पर अटका हुआ था। तो फिर जन्नत कौन है, उसने पूछा। चांदनी ने हंसकर जवाब में कहा, क्या आपको सच में जन्नत पसंद आ गई है? नहीं, मैं बस एक बार उससे बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी सुनहरी ताई ने मुझे उससे मिलने तक नहीं दिया, निक ने उदास होकर कहा। वो जन्नत को किसी से नहीं मिलने देती। कस्टमर तो दूर की बात है, वहां रहने वाली लड़कियां तक जन्नत से बात नहीं कर सकती। वो उसके आसपास भी किसी को नहीं भटकने देती। निधि ने उन्हें पूरी स्थिति समझाई। रॉन, क्या सारे दिन वो अकेली रहती है? पता नहीं, जन्नत वहां सिर्फ नाचती है, धंधा नहीं करती, चांदनी ने जवाब दिया। उनकी बात सुनकर मिस्टर मुखर्जी ने हैरानी से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? सुनहरी एक बहुत ही लालची औरत है, फिर जन्नत उसकी बुरी नजरों से अब तक कैसे बची हुई है? उसकी भी एक कहानी है, चांदनी ने कहा। और वो क्या? जन्नत से पहले वहां पर रोशनी नाचती थी, चांदनी के कहते ही आलिया ने पूछा। तब जन्नत बाजार का नाम रोशनी बाजार था। उसकी बात सुनकर चांदनी थोड़ी हंसी और फिर जवाब देते हुए कहा, जन्नत बाजार का नाम हमेशा से जन्नत बाजार ही है, फिर चाहे वहां पर कोई रोशनी नाचे या फिर कोई जन्नत। जन्नत को लगभग 2 महीने पहले उसका मामा वहां पर बेचकर चला गया था। बहुत गरीब परिवार से है और वो धंधा इसलिए नहीं करती क्योंकि वो सुनहरी ताई के लिए बहुत लकी है। वो औरत लालची होने के साथ बहुत अंधविश्वासी भी है। जब से जन्नत ने वहां कदम रखा है तब से उसकी कमाई दुगनी हो गई है, निधि ने उसे आगे की बात बताई। ऐसा नहीं है दीदी, मैंने किसी को बात करते हुए सुना था कि ताई किसी बाबा के पास जाती है। उसने कहा कि जब तक ये लड़की पवित्र रहेगी तब तक समझ ले तेरी लॉटरी लगी रहेगी। तो ताई जन्नत के आसपास भी किसी मर्द को फटकने तक नहीं देती। वो नाचती है तो भी उसके आसपास बहुत गुंडे लोग रहते हैं। आपने देखा नहीं, जब आप उसके पास गए थे तब आपको भी उन्होंने पकड़ लिया था, चांदनी ने उसे पूरी बात बताई। वे लोग जन्नत और सुनहरी ताई के बारे में सुनकर अभी भी हैरान थे। चीज दिखने में जितनी सामान्य नजर आ रही थी उतनी थी नहीं। वहां पर आप किसी भी लड़की से आराम से बात कर सकते हैं, बस जन्नत ही है जिसके आसपास ताई किसी को नहीं जाने देती। इतने दिनों में बस हम इतना ही पता लगा पाए हैं। बाकी इनके दलाल कौन है या वो लोग कहाँ से लड़कियाँ लाते हैं और उन्हें कहाँ भेजते हैं, इसका अंदाजा पता नहीं लग पाया है।
उन्होंने सारी बात बताकर निधि और चांदनी वहां से जाने लगी थी, तभी निक ने उसे रोकते हुए बोला, क्या मैं एक बार जन्नत से बात कर सकता हूँ? जन्नत से आप क्या कोई भी बात नहीं कर सकता साहब, चांदनी ने मुड़कर बोला। क्या जन्नत इतने कड़े पहरे में रहती है वहां पर? आलिया ने पूछा। अरे, हम लड़कियों के बीच पहरे की क्या जरूरत, चांदनी ने कहा। जन्नत से बात करने के लिए उसे जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, पर प्लीज मुझे एक बार जन्नत से बात करवा दो, मैं बस उससे थोड़ी देर बात करूंगा, निक ने भावुक होकर कहा। लगता है ये साहब जन्नत के पीछे सच में पागल हो गए हैं। वहां का हाल भी कुछ ऐसा है, वहां की लड़कियां आपको देखकर पागल हुई जा रही हैं और आप जन्नत के पीछे। लेकिन जन्नत से आप तो क्या, हम लड़कियां भी बात नहीं कर सकती। और वो क्यों, एमा ने पूछा। निधि ने गहरी सांस ली और उसे छोड़ते हुए कहा, क्योंकि जन्नत बोल नहीं सकती है। हाँ, वो साइन लैंग्वेज में बात करती है जो बस सुनहरी समझ सकती है, या फिर फुलवा जो कि जन्नत के आसपास ही रहती है। निधि की बात सुनकर वे सभी एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रहे थे। जन्नत बाजार के बाद एक राज खुलते जा रहे थे, तो वहीं जन्नत के ना बोल पाने की बात जानना उनके लिए किसी झटके से कम नहीं था। अब वजह ये भी है कि ताई उसे धंधा नहीं करवाना चाहती। जब सुनहरी ताई खुद वहां पर आई थी तो अपनी छोटी बहन के लिए आई थी जो कि बोल नहीं सकती थी, लेकिन उनके घर वालों ने उनकी बहन को भी वहां पर बेच दिया। ताई का कहना है कि जब जब वो जन्नत को देखती है उसे अपनी बहन की याद आती है, बहुत प्यार भी करती है वो जन्नत से, चांदी ने बताया। अब तो जन्नत बाजार की जन्नत के साथ सुनहरी का भी एक नया ही रूप देखने को मिल रहा है। अब तक सबसे यही सुना था कि वो बहुत लालची है, लेकिन जन्नत के लिए उसका ये प्यार, ये सच में हैरान करने वाला है, मिस्टर मुखर्जी ने कहा। हमें जाना होगा सर, हम ज्यादा देर नहीं रुक सकते हैं। वैसे तो हम कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाने थे तो कस्टमर के बहाने यहाँ तक आ गए, निधि ने कहा। मैं इन दोनों को छोड़कर आता हूँ, आप चाहें तो उस दिन की तरह उस दरवाजे से वापस जा सकते हैं, मिस्टर मुखर्जी ने कहा और वहां से उन दोनों लड़कियों के साथ चले गए। निधि और चांदनी की बात सुनकर वे सभी हैरान थे कि जन्नत बोल नहीं सकती। अब तक उन सबको यही लग रहा था कि जन्नत ही प्रियल है। उनके जाते ही निक ने भावुक होकर कहा, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो लड़की बोल नहीं सकती, वो मेरी प्रियल है और तुम लोग जानते हो ना कि वो कितना बोलती है, मैं तो उसे चैटर बॉक्स तक बुलाता था, उसकी बातें तो कभी खत्म ही नहीं होती थी। ये सब तो हम वहां जाकर ही पता लगेगा, आप टेंशन मत लीजिए, हम वहां रहेंगे तब जन्नत की सच्चाई भी हमारे सामने आ ही जाएगी, आलिया ने उसे दिलासा देते हुए कहा। अब तो मैं भी इस जन्नत को देखना चाहती हूँ, एमा ने कहा। वे सारे मिशन से जुड़ी कुछ प्लानिंग कर रहे थे तो वहीं निक प्रियल के ख्यालों में गुम था। पता नहीं क्यों मुझे ये फीलिंग आ रही है कि वो लड़की कोई और नहीं प्रियल है, अगर एक बार उसके पास जाऊंगा तो पता चल जाएगा कि वो कौन है, बस कैसे भी करके उससे एक बार बात हो जाए, तब शायद इन लोगों को मेरी बात पर विश्वास हो जाए कि वो कोई अजनबी नहीं है। बिल्कुल, वो तो मेरी जानी पहचानी सी वो अजनबी है जिसे मेरा दिल दूर से भी पहचान लेता है।